अच्छा आपको रखो माइक, आप संचालन कर रहे हैं, करो भैया। बिना संचालन संचालन के कुछ नहीं होना चाहिए, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज फॉर्मेलिटी इतनी हो गई कि संचालन करेंगे, हम ही नहीं बुलाओगे बोलने के लिए, बोलोगे तो हम बोलेंगे नहीं, अरे तुम्हें बोलने से बोलो न्या बोले न्या बोले, हम तो सीधे एक बार तुम्हें बोल लेंगे तो अपने आओ और चुपचाप बोलो, तो नहीं बोलने न्या बोलो, चार जने आन के निवेदन करें, सीढ़ी पर चढ़े हैं आप चलो, अरे प्रवचन करना हम जाएंगे उसमें क्या अब, लेकिन फॉर्मेलिटी तो आप
सुन रहा था तो मुझे लगा कि कितना सौभाग्यशाली है समुदाय की इतने कठिन कठिन प्रश्न और उनके ऐसे उत्तर की जो फिर कोई दुविधा मन में न रखें, लेकिन मुझे लगा कि महाराज जी तो इतने विद्वान हैं अन्यथा इतने प्रश्न कितने कठिन और कितनी मुश्किल में भी डाल सकते हैं, हम लोग तो एमए की परीक्षा में भी दे देते हैं 15 प्रश्न दे देते हैं 12 दे देते हैं कि कोई भी 5 कीजिए अच्छा 8 हो गए हैं तो 8 हो गए हैं तो 20 देते होंगे
अच्छा
हाँ 20 दे दिए 12 दे दिए चलो 12 में से 8 यहां तो ऐसा है कि हर प्रश्न आपने कुछ
नंबरों में देखो
उसको सामने आएगा तो उसमें प्रतिपोष्ट में उसमें कोई सफलता लेकिन महाराज जी एक व्यक्ति ऐसा हुआ था इस देश में कि जिसके सामने जब प्रश्न पत्र आया कि सॉल्व एनी 5 तो उसने 10 के 10 का उत्तर दे दिया और लिख दिया एग्जामिन एनी 5 याद आता है किसी का नाम राजेंद्र प्रसाद एग्जामिन एनी 5 ये भी चमत्कार है सब हमारे समाज में से होता है और प्रत्येक छात्र में से हो सकता है लेकिन केवल चाहता है प्रश्न नहीं करता अन्यथा सब व्यक्ति राजी हो रहा बहुत अच्छा आपकी कृपा से सोनागिर की वंदना होगी और खूब सारे पहाड़ खूब सारी टोंके खूब लंबे लंबे रास्ते और खूब अच्छी अच्छी हरी हरी ककड़ियां एकदम ये तो देखिए महाराज जी के कारण यहां आना हुआ, कितनी सारी बातें हो जाती हैं। मैं थोड़ी सी रचना सुना पंडित जी आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, और बड़े सागर जी भी सुनाएंगे सुनो महाराज जी, और फिर श्रीमान सागर जी सुने और किताब हम देखते। हम इस बार महाराज जी को सुनाने के लिए दो तीन नई कविताएं लाए थे, बहुत कम लिखते हैं हम क्योंकि बहुत अच्छा, लेकिन और इस तरह का और भी कम लिखते हैं। अब देखिए मुझे कई बार यहां भी सब लोग कहते हैं कि हम लोग मनुष्य और खासकर इस काल में कितना पापात्मा है, कितना गिरा हुआ है, कितना श्रावक धर्म से च्युत होता जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि इसी समाज में श्यामा सागर जी जैसे मुनिराग भी हमको दिखलाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ है, कुछ ऐसा है कि वो मुझे लगा कि ऐसे कहा जा सकता है कि जहां देखो कीचड़ ही कीचड़ है, जहां देखो चंद्रमा जी आपने भी नहीं मैंने जी वो शेयर्स का नाम तो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा आपके गणधर कहे जा सकते हैं,
गणधर तो तीर्थंकर के वो थे, त्रिशूल दीदी
शिष्य शिष्य आपने शब्द कहा था कि वो शिष्य भी होते हैं,
शिष्य पर गणधर तो विशेष बन गया है, तीर्थंकर के शिष्य को ही गणधर कहे।
अच्छा कल्पना करो कि श्यामा सागर जी तीर्थंकर हैं तो क्या श्याम से गणधर हो सकते हैं? कहा था उनका आने के लिए देखो जहां देखो कीचड़ ही कीचड़ है, जीवन में भी जगत में भी। और प्रभु आप कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो आप सत्य कहते हैं कीचड़ में ही खिलता है कमल, संसार के क्षुद्र कीचड़ में खिले हुए आप ही तो है मेरा कमल। आपके होने से कीचड़ भी महान होगा, आपके होने से हो गई है शुद्धता महिमा मंदिर। हम न हो कीचड़ न हो, हम न हो तो बताइए प्रभु फिर आप कैसे होंगे? हम न हो तो आप फिर कैसे होंगे? कीचड़ और कमल का घराना शाश्वत है। एक कविता कल्पना महाराज जी को निवेदन की थी, वो उस समय मैंने की थी कि महाराज जी ने एक श्रावक वहां पधारे थे दिल्ली से, उनसे परिचय कराया, उन्होंने सात प्रतिमा धारण कर ली, सामान्य जीवन जीते हुए सात प्रतिमा उन्होंने धारण की, उनकी पत्नी ने पांच प्रतिमा धारण की। उससे मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसी कविता लिखी थी कि जो इस अवसर पर सुनाई जा सकती है, तो उनकी उपस्थिति में मैंने दिल्ली से पति पत्नी आए थे और महाराज जी को प्रणाम करके लौट रहे थे, उनकी गाड़ी थी। प्रभु तुम्हें प्रणाम करते हुए ये माई बीच बीच में थोड़ा सा फिसल जाता है, फिर ज्यादा कम हो जाता है अपने आप से। इसको तुम्हें प्रणाम करते हुए क्या मैं ही भविष्य को प्रणाम नहीं करता, प्रभु तुम्हें प्रणाम करते हुए क्या मैं अपने ही भविष्य को प्रणाम नहीं करता? बच्ची जब अपनी दादी को प्रणाम करती है, बच्ची जब अपनी दादी को प्रणाम करती है, मुझे लगता है भविष्य की दादी वर्तमान दादी को प्रणाम कर रही है। फिर से देखिए प्रभु, इसको थोड़ा समझिएगा पूरी कविता कहां कैसे जाती है। प्रभु तुम्हें प्रणाम करते हुए क्या मैं अपने ही भविष्य को प्रणाम नहीं करता? बच्ची जब अपनी दादी को प्रणाम करती है, मुझे लगता है भविष्य की दादी वर्तमान दादी को प्रणाम कर रही है। तुम तो शाश्वत प्रभु हो, तुम तो शाश्वत प्रभु हो, पर क्या मैं शाश्वत पुजारी हूं? प्रभु तुम तो शाश्वत प्रभु हो, लेकिन क्या मैं केवल शाश्वत पुजारी हूं? तुम निश्चित ही शाश्वत हो, पर क्या मेरी नियति भी शाश्वत है कि जैसा हूं वैसा ही बना रहूं? तुम निश्चित ही शाश्वत हो, पर क्या मेरी नियति भी शाश्वत है कि जैसा हूं बस वैसा ही बना रहूं? प्रभु तुम्हें प्रणाम करते हुए मैं वहां नहीं रह जाता, प्रभु तुम्हें प्रणाम करते हुए मैं वहां नहीं रह जाता जहां प्रणाम के पहले था। समझिए प्रभु, तुम्हें प्रणाम करते हुए मैं वहां नहीं रह जाता जहां प्रणाम के पहले था। मेरे प्रणाम तुमसे मेरे फासलों को कम करते चलते हैं। मेरे प्रणाम तुमसे मेरे फासलों को कम करते चलते हैं। और तुम देखना प्रभु, मैं एक दिन अपने प्रणामों की ताकत से, तुम देखना प्रभु, मैं एक दिन अपने प्रणामों की ताकत से फासले कम करते करते ठीक तुम्हारे निकट आकर खड़ा हो जाऊंगा। और तुम देखना प्रभु, मैं एक दिन अपने प्रणामों की ताकत से फासले कम करते करते ठीक तुम्हारे निकट आकर खड़ा हो जाऊंगा। बोलो, तब भी क्या मुझे हमेशा की तरह सिर्फ आशीर्वाद ही होगा? बोलो, तब भी क्या हमेशा की तरह मुझे आशीर्वाद ही दोगे? ये गले से ही लगा दोगे? ये कविता मैंने कल आपको सुना दी थी, फिर से सुना रहा हूं क्योंकि इससे ताजा मेरे पास कोई कविता थी नहीं, बाकी तो मैं पुरानी सुनाऊंगा ही। ये बिल्कुल हकीकत है कि जब मुझे मालूम पड़ा कि महाराज अस्वस्थ हैं, और उस दिन जब मैं शाम को मंदिर जी गया तो मेरा जो एक डायलॉग चलता रहता है मूर्ति से, भगवान से, अरहंत से, वो चलता रहता है। प्रभु कल मंदिर में मैंने भगवान को जब बताया कि महाराज जी अस्वस्थ हैं, वे सदैव की भांति स्मित में बने रहे। स्मित नहीं, मुस्कुराहट। स्मित सुस्मिता की लड़कियों का नाम होता है, चाहे मैं हंसे लेकिन नाम होता है। प्रभु कल मंदिर में मैंने भगवान को जब बताया कि महाराज अस्वस्थ हैं, वे सदैव की भांति स्मित में बने रहे, मैं आहत हुआ। मुझे लगा हम तो कह रहे हैं कि हमारे महाराज जी बीमार हैं और प्रभु जो हैं उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं, वे सदैव की भांति स्मित में बने रहे, मैं आहत हुआ। मैंने दोबारा उन्हें बताया कि मैं किनके बारे में कैसी खबर लाया हूं, और यह भी कि खबर सुनकर भी वे मुस्कुरा रहे हैं। फिर तत्काल भान हुआ कि अरे मैंने ऐसी गलती क्यों की, ऐसा सोचने की कि उन्हें वो बात ज्ञात नहीं होगी जिसे मैं खबर की तरह उन्हें बता रहा हूं। वे तो केवल ज्ञानी है, त्रिकांतदर्शी, उन्हें तो यह भी पता होगा कि महाराज कब पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, निश्चित ही अत्यंत शीघ्र। महाराज जी, हमने कुछ कविताएं आपसे अप्रूव नहीं कराई, हम लाए हैं, अब फिर कुछ उसमें टेक्निकल गलती हो जाए, क्योंकि मामला आपके प्रश्नोत्तर से लगता है कि कितनी चीजें हैं, कहीं कहीं हो जाती हैं, और हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, और यहाँ थोड़ा अलग, थोड़ा सा एक डिसिप्लिन का आपके सामने खासकर। देखिए भाई, ये दो कविताएं हमको सुना रहे हैं, उस समय पूज्य गुरुवर भव्य सागर जी इंदौर में भव्य सागर जी से हमारे दर्शन नहीं हुए थे, उस समय महाराज जी के साथ एक छुंदक जी थे और हेलक जी थे, महाराज जी तो अकेले थे। तो एक बार एक थोड़ी सी कठिन कविता है, हमने वहां समाश्रम के मंदिर में देखा कि मुनि अरहंतों को क्यों वंदना कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि देखो अपन जो मनोकार मंत्र पढ़ते हैं उसमें पांच पंक्तियां हैं, हमारे पांच परमेष्टि हैं, परम इष्ट हैं, उनमें से दो तो यही हैं और दो नकेल यही आपस में एक दूसरे से कुछ चल रहा है, वो प्रणाम कर रहे हैं, वो उपस्थित हैं, तो हमको लगा कि मनोकार की दो पंक्तियां तो यहीं पर हैं। इस पर एक छोटी सी कविता हमने लिखी थी, वो हम आपको सुना रहे हैं, और उसके बाद एक और महाराज जी के साथ जो हमारी अनुभूति एक बहुत ठंड के दिनों की है वो भी हम आपको सुनाएंगे। आज मैंने महामंत्र अहंकार की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति की साक्षात वंदना करते देखा। आज मैंने महामंत्र नमोकार की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति की साक्षात वंदना करते देखा। अरिहंत प्रसन्न मुद्रा में मूर्तियों में मग्न थे, अरिहंत प्रसन्न मुद्रा में मूर्तियों में मग्न थे, साधुगण साधना की प्रतिपूर्ति में मग्न थे, भक्तगण परमानंदित भव्य दृश्य के आस्वादन में संलग्न थे। भक्तगण परमानंदित भव्य दृश्य के आस्वादन में संलग्न थे, अरिहंतों में सिद्धि का प्रदीप्त आभा मंडल था, अरिहंतों में सिद्धि का प्रदीप्त आभा मंडल था, साधु संग पाथेय रूप पिच्छी थी कमंडल था। कविता की दो पंक्तियां एक दूसरे को संदर्भ देकर संबद्ध कर रही थी, कविता की दो पंक्तियां एक दूसरे को संदर्भ देकर संबद्ध कर रही थी, भक्ति और सिद्धि के रंग आपस में मिलकर रंगारंग इंद्रधनुष बन गए थे। सरोवर ने अपनी नीली आंखों से देखा, अब सरोवर क्या है, समाज है, सरोवर ने अपनी नीली आंखों से देखा, कमल की एक पंखुड़ी दूसरी में खुल रही थी, कमल की एक पंखुड़ी दूसरी में खुल रही थी और आनंद के अश्रुओं से हर आंख धुल रही थी। एक कविता बहुत ठंड के दिनों की है और वो छोटी सी कविता है, फीलिंग है, कई हमारे मित्र तो उसको समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, इसमें भी क्या महाराज जी जैसी कोई चिड़िया आ गई और उसमें क्या हो गया। वो कड़कड़ा थी ठंड के दिन थे, अभी तो गर्मी के दिन है, बबीना वाले कल हमको बता रहे थे कि यहाँ पर अनेक साधु महात्माओं का स्वागत करने का, उनका जयकार करने का, उनके प्रवचन सुनने का आपको मौका मिला है, यहाँ और भी मनवाल आए हैं, उपाध्याय आए होंगे, आचार्य आए होंगे, और ऐसे समय में भी रहने होंगे जो कड़कड़ा की ठंड पड़ रही हो, उस समय की कल्पना कीजिए, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई, बोली बोली बाबा, चिड़िया को दया आई, बोली बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, एक लाडू, बोली बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, एक लाडू, लादे, साधु ने कहा, लादे, साधु ने कहा अगर मेरे नाप का मिल जाए तो, साधु के नाप का पाजामा, लादे अगर मेरे नाप का मिल जाए, चिड़िया उड़ी लेकिन चिड़िया अभी तक लौटी नहीं है। जो है दागे नहीं है। ये कविता ऐसी है साहब कि इंदौर में खूब छोटे मुनि, बड़े मुनि, सच्चे मुनि, उनसे भी सच्चे मुनि ऐसी कहा जाना चाहिए थी। क्योंकि सच्चे का विलोम कहने का अधिकार तो शावक को नहीं है, तो सच्चे मुनि और उनसे भी सच्चे मुनि सलाते हैं खूब जय जयकार जैंस द्वारा, नाम जैंस द्वारा, राजनीति द्वारा, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं आए हैं तो सारा जुलूस रुका हुआ है और सारे बात सारी बातें होती हैं। तो मुझे लगा कि यार देखो अपने को कोई पूछते ही नहीं है पर मुनि बन जाओ। बहुत पूछेंगे तो पूछ लगी पूछेंगे, अरे अपने शत्रु में आकर के पांच हुए फिर अपन कहेंगे अच्छा आया। सब बड़े बड़े नेता आएंगे, शेख आएंगे, सब अपने पांच होने आएंगे, एक देखे पचासों ये बातें उसमें से ये बात दूर होती है, कई बातें होती हैं, अपन बन तो नहीं सकते ऐसा त्याग, लेकिन लगते हैं देखो अगर अगर ऐसे होते, अगर ऐसे होते देखो ये सब लोग जो अपनी तरफ अपनी नमस्ते का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं अपने चरण छूने के लिए, तो ऐसी कल्पना मैं करता हूं और फिर प्रैक्टिस करता हूं, एक दिन तो नहीं बन सकते, एक दिन तो नहीं बन सकते, महाराज जी के पास जाए दीक्षा लेना तो पहले तो सोचेंगे कि ये दीक्षा लेंगे। कितनी साल पूरे 10 साल तक ऐसे रहो, कितनी साल है उसका, उसकी भी तो अपनी प्रक्रियाएं हैं और आपकी परीक्षा है, तो उनके अपन कुछ प्रैक्टिस करो। उस पर एक छोटी सी टिप्पणी है और उसमें एक मैसेज है कि क्या इस तरह हो सकता है कोई सोचने से मुनि। सोने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा, सोने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा, बाल तो नहीं मोच पाया। महाराज जी ने तो सुना, महाराज जी दो तीन दिन हुए शायद, बाल को नहीं मोच पाया, बहुत कठिन है, हाथों की अंजुरी में खाने की कोशिश की कि भैया फिर ऐसे खाना, बाल को नहीं मोच पाया, हाथों की अंजुरी में खाने की कोशिश की, फिर ध्यान की कोशिश में था, ध्यान की कोशिश में था कि एक चिड़िया कमरे में आई, यहां वहां कुछ उड़ी, यहां वहां कुछ टकराई और फिर फौरन से बाहर हो गई, शायद वो मुझे बतलाने आई थी कि उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती। ध्यान की कोशिश में था कि एक चिड़िया कमरे में आई, यहां वहां को चुड़ी, यहां वहां को टकराई, फिर बाहर फिर हो गई, शायद वो मुझे ये बतलाने आई थी कि उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती। हो गई महाराज जी हमारी तो
मेरी
वो लंबी है, 5-1 मिनट लगे। महाराज जी आज कितने बजे तक का अपना है?
आप जब तक करेंगे
हा?
मैं तो जल्दी कर दूंगा कविता।
महाराज जी हम चाहते हैं आज आज आप और भव्य सागर जी खूब कविताएं सुनाएं।
अच्छा मतलब आपकी खत्म हो गई?
हाँ मैम खत्म होती है। और महाराज जी से आज महाराज जी से आपने अभी तक रचना नहीं सुनी, ये पता नहीं आप कैसे उनकी रचना बिना सुने बने रहे। कृपया महाराज जी का जयकार कीजिए और उनसे खूब सारी कविताएं सुन।
आप नहीं सुनाएंगे? आप नहीं सुनाएंगे? सागर महाराज गुरु अन्यायी सागर महाराज मुनि अक्षमा सागर महाराज देखो भैया कब पाता पंजाब भैया सरोज कुमार कह रहे कविता तो नहीं जाना थे मैंने हम इतने बूढ़े आदमी हैं कछु टूटी फूटी बात के तो हंसी मिली और बन गए तो हंसने मन है तो कहो शुद्ध परमात्मा कहो शुद्ध निश्चय कथा कहो शुद्ध व्यवहार और अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रस कूट रस स्वागत सुख उपजे अनुभव याको नाम मुक्ति अंत कारण कहो अनुभव को अधिकार भक्ति विचारक ध्यान के मन पावे विश्राम और अनुभव के रस को रसायन कहते सब कुल अनुभव के अभ्यास के तीरस को बाज है और अनुभव को केवल है काम ज्ञानी चित्ताधीन अनुभव के कर्म तार पर सो प्रीत यार अनुभव समान न धर्म को और है अनुभव के समान कोई धर्म नहीं है कहते हैं जो जटिल जड़ मूल उखाड़ कल्प करूं और बोलत मूल बनू कल्प करूं चंदन के पेड़ उखाड़ के बनूर बोता है जय प्रजराज बेल ऐसे गंगा को बेच के उखल मैंने गंगा को खरीद ले तो क्या कहते जैसे छोड़ रतन चिंता मणि मूर्ख पांच खंड खोल लिए जैसे धर्म विचार
वर्षों की अभिलाषा में आदमी धर्म को छोड़ देता है, जैसे हाथी को बेचकर खड़ को खरीद लेता है। इस प्रकार कुबुद्धि जीव है, संसार में चिंता नहीं रतन तो होता ही है। जिन धर्मदेव शास्त्र गुरु के समान तो कोई धर्म नहीं है, और करते हैं तो बहुत ज्ञानहीन विवेक बनाए, मत्स्य बजेंद्र सुहीन अनुभूवे और कंचन भाग में धूल भरे सके, मूल सुधार सुपल धूवे। मूर्ख सुधारस क्या होता है, अमृत उससे पैर धोवे और सोने की थाली को धूल फेंके, उस समय वो अमूल है। कौआ के उड़ाने के पीछे मणि फेंक गई तो कहते हैं चोर दोर देह बनारसी पाए अज्ञान अखारत। यह अज्ञानी जीव अपनी इस पर्याय में ऐसी सड़कपुर में पैदा होकर यह अखारत खो रहा है, उसके समान अखारत खो रहा है। सुजी तो चर्चा हमने करी आप की ठीक है, अब क्या है कहते हैं देश देश में नगर नगर में गुरु को है उपदेश। हिंसा भूत चोरी कुचीन और गुरु काला रहे सब पर हमारे ज्ञान के आधार। तुमसे वाणी बहुत प्यारी, तुम्हारी वाणी बहुत प्यारी, तुम्हारी दृष्टि रहती सत्ता, तुमने तो तब कठिन तपाला राज देश को दूर हटाया। कितना सुनने लगे, कितनी सुनने लगे मूर्ति दर्शन से हो जात धन्य सब। अंतिम काल महादुखकारी ज्ञान की धारा बहत बही तुम्हारी। अंतिम काल महादुखकारी है, ज्ञान की धारा बही तो आचार्य की विद्या चालक के और उपकार से बही है। और जंगल हो या नदी तुम्हारा हो मगर चाहे कियस भाषा, दर्शन को साधक आ जाता। क्षेत्र क्षेत्र का ही उद्धारा और जीवन भर बने तह दुआलाए, आप किसी से कुछ नहीं मांगत देते ज्ञान दया गुण गागर। कुंडल पर है क्षेत्र विख्यात बलदाया का लगा बलवारा, पर्वत ऊपर बने हिमालय पर्वत नीचे और हिमालय बने धर्मशाला अति सर्व धर्मशाला के और दीप बगल में और सर्व मैंने चला दी है। सूर्य अपान बना है ब्रह्म का क्या ज्ञान नहीं है, उसके बंधन का कोई ज्ञान नहीं है। हमने बीत गई कई वर्षों भाई, बीत गई कई वर्षों भाई, देख रहे कहती चतुराई, मंदिर का वह काम लगा है कई करोड़ खर्चा हो गए हैं। बनी समाधि कितनी अच्छी, देखत काम होते हैं हंसी, लिखने को अरे लिखने को अरे समय नहीं है, टूट गई खत्म भई है। आने लिखे में समय नहीं है, गाड़ी बना गई। अब कहते हैं 2000 में गजरत पथ कल्याणक मेरा था, विद्या सागर गुरु आचार्य श्री का संग बराबर
ब्रह्मचार्य में सिद्धांत है गुरु है तो आस पास जब देखो साधक साधक आए दर्शन को भरी सरला तब देख सोने जैसी काया जिनकी हसी मुद्रा बैठे थे और मीठी बोली ज्ञान सुधार जिनके मुख से बहते थे एक की बातें इतनी छोड़ दो अरानी की सुनो बात इतनी बातें इतनी छोड़ दो और हाथ जोड़कर किया निवेदन मैं तुम्हें चरणों में आया कर दिया मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा तो मेरे अशांत चरणों में घेरा है इलाज आपके पास मेरा पास है औषधि ही औषधि के अनुरोध पर मैं तो करवा दो समाधि गुरु मेरी आप अपने सानंद में बुलाकर करवा दो समाधि करुण मन कर देख लिया मुनिराम ने आचार्य श्री ने निवास देख लिया बुढ़ा सेवक है सारे बुढ़ा बंद सफेद है सारे सबे सारे भाग हो गए और बंधन की पंक्ति टूट गई है सारे भाग भी हराब है आंखों की ज्योति मंद रही और सब शरीर कांपन लागो है देह रही कमजोर आशीर्वाद आ जाओ रहो संग में ध्यान लगाओ क्या क्या समझी आपने दिया दिया उनकी क्या कितनी आ जाओ संग में ध्यान लगाओ कि जिनके संग में बाल ब्रह्मचारियों के नाम अभी है कि कितनी कहो भव्य सागर की गुण की विद्या सागर के पास क्षमा सागर के संग में बीत रहे दसवें चार और आचार्य श्री का आशीर्वाद है अपरंपार आचार्य श्री का आशीर्वाद मेरे लिए हमारे सहयोग सुनार हमारे तो जय कथा है भैया जय हमारी कथा है अब बहुत बड़ी कथा है मैं कभी वो सुनी है अरे तो हम ध्यान देखें मेरी भगवान महावीर स्वामी की सागर मुनि महाराज कुछ थोड़ी सी कविताएं आपने नहीं सुनी होंगी तो कविता का मैं एक मैसेज समझता हूँ कविता उनके कीमती नहीं है कविता एक मैसेज है चाहे डाकर की कहा जाए या पूरी सी भी कहा जाए कुछ शब्द में कहा जाए ज्यादा शब्द में कहा जाए प्रवचन के रूप में कहा जाए कविता को एक मैसेज है एक संदेश है आप उसको उसी रूप में लीजिएगा सिर्फ कवर करके ताली पीटना वो सरोज कुमार जी का जितने वहां बच्चे हैं तो आप भगा लेना जब वो समय ताली होने की आवश्यकता नहीं यात्रा पर निकला हूं लोग बार बार पूछते हैं कितने चलोगे कहां तक जाना यात्रा पर निकला हूं लोग बार बार पूछते हैं कितने चलोगे कहां तक जाना है मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूं कि कहीं तो नहीं जाना मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूं कि कहीं तो नहीं जाना इस बार मुझे अपने से चलकर अपने तक आना ये मैसेज अपन सबके लिए उसने कुछ नहीं जोड़ा उसने कुछ नहीं जोड़ा लोग बताते हैं पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं उसने कुछ नहीं जोड़ा, लोग बताते हैं पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला, जिंदगी भर अपना सब सबको देता रहा, दे देकर सबको जोड़ता रहा, लोग तो कहते हैं इसने कुछ नहीं जोड़ा। मैं विदिशा में चतुर्मास कर रहा था तो वहां पर एक परमागम मंदिर में बैठा, वहां बहुत बढ़िया फानूस ये होते हैं ना, बहुत डेलिकेट होते हैं, उसके झाड़ फानूस लगे रहते हैं सजावट के लिए, उसमें रोशनी भी करते हैं, बल्ब लगा देते हैं, तो बहुत बड़ा झूमर जिसको झूमर बोलते हैं फानूस, तो वो झूमर लगा हुआ था, उस पर चिड़िया आकर के बैठी तो बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन डर भी लगता था कि कहीं गिरना है पूरा नहीं, तो कहीं गिर वहां आप जी बैठे कि उधर जाओ जब गिर, तो उस पर से जब मैं बैठ कर कहती थी कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती, कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती है, पर मन डरता है कि कहीं फानूस टूट कर गिर न जाए, कि कहीं चिड़िया या तो फानू सकते हैं, यही फानू सी है, इसमें से किस दिन चिड़िया हो जाएगी कहां नहीं जा सकता। मैसेज तो ये था, मैं मालपुर में था, ये जब कोई देश में काफी झगड़ा वगड़ा हुआ था है ना, मंदिर और मूर्ति को लेकर के, हाँ जो भी जैसा भी हुआ, तो उस समय मालपुर में वो एक साथ कविता लिखी, देखा एक वृक्ष के नीचे टूटे गिरे छिन्न सूखे पत्तों पर उछर कूद करती चिड़ियों का अपने ही पैरों की ध्वनियां सुनना, देखा एक वृक्ष के नीचे टूटे गिरे छिन्न सूखे पत्तों पर अपने ही उछर कूद करती चिड़ियों का अपने ही पैरों की ध्वनियां सुनना, और मुक्त हो कुछ कहकर कुछ चुप रहकर सब ओर देखना, कुछ कहकर कुछ चुप रहकर सब ओर देखना, विस्मय से सब ओर देखना, लगा जगत का खेल यही ओपना, लगा जगत का खेल यही ओपना, अपनी ही प्रतिध्वनियों में विस्मय विलुप्त हो खोए रहना। चिड़िया भी अपनी आवाज सुनकर के सोचती थी कोई नहीं यहां पर, अपन भी ऐसे ही करते, अपने जो कर्म अच्छे और बुरे जो भी है वो सब अपने को रिटर्न मिलते हैं, और अपन उसी में हर्ष विषाद करके अंगेज रह आते हैं। ये मैसेज था, मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करे, मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करे, इस तरह लिखना कहां दिखता है, इस तरह लिखना कहां दिखता है, उसका कहना है सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है, और सफेद पर काला लिखना ठीक भी तो नहीं लगता। सफेद पर काला लिखना ठीक भी तो नहीं लगता, सफेद पर सफेद ही लिखा जाता है, तब कितना भी लिखो कागज एकदम सफेद रहा होता है। पूरा अभिव्यक्त को नहीं कर पाते हैं अपने अंदर जो भावनाएं हैं, कई बार लगता है कि अपन सारी बात कहने पर कह नहीं पाते, उस पर मैंने लिखा था कुछ कहने से पहले हम कितना सोचते हैं कि इस बार सब कह देंगे, कुछ कहने से पहले हम कितना सोचते हैं कि इस बार सब कह देंगे, पर कहने के बाद मालूम पड़ता है कि कहा कम और अनकहा ज्यादा रह गया, कहा कम और अनकहा ज्यादा रह गया है। असल में भावों के प्रवाह में या तो शब्दों का सेतु बन नहीं पाता या टूट जाता है, शब्द की जरूरत नहीं होती, कहने का आशय ये। अच्छा अभी जो लेटेस्ट है वो सुना देते हो, चिड़िया बारिश चिड़िया भीग जाती है जब बारिश आती है, चिड़िया भीग जाती है जब बारिश आती है, नदी भर जाती है जब बारिश आती है, धरती भी गीली हो जाती है जब भी बारिश आती है, कितना मुश्किल है इस पर है आदमी का भीगना और भर पाना, कितना मुश्किल है इस तरह आदमी का भीगना और भर पाना, आदमी के पास बचने के उपाय है ना, इसलिए वो बचे जाता है हमेशा। मैंने पूछा चिड़िया से कि आकाश इतना आकाश असीम है, क्या तुम्हें अपने खोने का डर नहीं लगता, चिड़िया उड़ती रहती, तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने पूछा चिड़िया से कि आकाश असीम है, क्या तुम्हें अपने खो जाने का भय नहीं लगता? चिड़िया कहती है वो अपने घर लौटना जानती है। वो भटके जिनको अपना घर में मालूम। भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक बच्चे से पूछा, जिसे अपन पूछ लेते हैं भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा, तब सचमुच मुझे भी लगा जिसके जीवन में जितना समा जाए भगवान उतना बड़ा। बाकी तो सब की बात है। अपने ही बच्चों को डराने धमकाने के लिए हम डरावने चेहरे अपने लिए बनवाए थे हमने, अपने ही बच्चों को डराने धमकाने के लिए कुछ डरावने चेहरे हमने अपने लिए बनवाए थे। बच्चे कुछ दिन तो डरते रहे फिर असलियत जानकर हंसते रहे, बच्चे कुछ दिन तो डरते रहे फिर असलियत जानकर हंसते रहे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे चेहरे लगाकर मुझे ही डरना है। बड़े लोग आने पर तो डरवाते हैं सब चीजों के लिए। एक वो सुनाता हूं, अपरिग्रह पर चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने जितना अपनी चोंच में समाया उतना ही पिया उतना ही लिया, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, चिड़िया ने घोंसला बनाया अपना इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। संसार संसार तो बहुत बड़ा था, चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सबने समाया, चिड़िया ने सबा सिखाया कि एक लेना देना समाया। लेना एक देना सवाया। 1.5 नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी, सवाल चलेगा। मैंने आकाश से पूछा तुम बहुत ऊंचे, मैंने आकाश से कहा कि तुम बहुत ऊंचे, तो आकाश ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे। फिर मैंने सागर से कहा तुम खूब गहरे हो, तो सागर ने लहरा कर मुझसे कहा कि तुम हमसे भी ज्यादा गहरे हो। सागर ने लहरा कर कहा कि तुम अधिक गहरे हो। अब वो इधर सिस्टम लगवाना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम कम ज्यादा, इसका तो कम ज्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, आप तो उसको पकड़ा लीजिए, अगर कम ज्यादा करते रहिएगा मैं यहाँ लगवा लूंगा, जो तो कम ज्यादा करने का कम थोड़ी ज्यादा हो जाए। मैंने आकाश से कहा कि तुम बहुत ऊंचे हो, आकाश ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। फिर मैंने सागर से कहा कि तुम खूब गहरे हो, सागर ने लहरा कर कहा कि तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो। मैंने सूरज से कहा सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो, मैंने सूरज से कहा सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो। सूरज ने हंसकर कहा तुम मुझसे भी कई गुना तेजस्वी हो। फिर मैंने आदमी से कहा कि भाई तुम महान हो, फिर मैंने आदमी से कहा कि भाई तुम महान हो। आदमी झट से बोला तुम ठीक कहते हो। आदमी के साथ यही मुश्किल है, प्रकृति के साथ नहीं, आदमी के साथ मुश्किल है। एक और सुनाऊं और बस फिर खत्म। अग्निपथ मेरी नहीं भैया, वो हरिवंश राय बच्चन की है। हाँ तो अभी तो अपन एक आचार्य शीतल सुनाऊंगा और एक ही अंतिम दो कविताएं सुनो। अपना घर सुना रहा था, वो लास्ट में सुनाऊंगा, यह पहले सुना दूं अपना घर। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर तब बहुत अच्छा लगने लगता है। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर, वरना किसी का घर आना बजट गड़बड़ा जाता है कि जीओ आ गए लियो नहीं। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगने लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं जानता हूं तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो। मैं जानता हूं तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो, पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है, पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है। सचमुच तुम्हारे घर ने मेरे घर को अपना घर बना दिया है, सचमुच तुम्हारे घर ने मेरे घर को अपना घर बना दिया है। ये उसका भाव था। और अंत आप कौन सा कह रहे थे? अच्छा, जब भी मैं रोया करता मां कहती ये लो शीशा, देखो तो इसमें रोनी सूरत अपनी कैसी तो लगती है। जब भी मैं रोया करता मां कहती ये लो शीशा, देखो इसमें कैसी तो लगती है रोनी सूरत अपनी, अनदेखी शीशा मैं सोच सोच कर अपनी रोनी सूरत हंसने लगता। अनदेखे ही शीशा मैं सोच सोच कर अपनी रोनी सूरत हंसने लगता। एक बार रोई थी मां भी नानी के मरने पर, एक बार रोई थी मां भी नानी के मरने पर, फिर मरते दम तक मां को खोलकर मैंने हंसते कभी नहीं देखा। फिर मरते दम तक मां को खोलकर हंसते कभी नहीं देखा। मां के जीवन में शायद अब शीशा देने वाला कोई नहीं था, मां के जीवन में अब शायद शीशा देने वाला कोई नहीं था। सबके जीवन में ऐसे ही खो जाता होगा कोई शीशा देने वाला। ये आप मैं वो आचार्य के लिए एक लिखा था, वो उससे अंत करूं, फिर ज्यादा एडजस्टन ज्यादा हो जाएगा, एडजस्टन ज्यादा हो जाएगा, समय तो अपनी जगह है, एडजस्टन उतना ही करना चाहिए जितना अपनी क्षमता है। एक आचार्य के लिए मैंने सन 88 में गीत लिखा था, तो वो आपको सुनाई देता हूं। जो जो तिसा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो जो तिसा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो सांस बन मेरे कदम में आता रहा जाता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता। मैं बंधा जिससे मुझे जो, मैं बंधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश ना देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, जो मूर्ति में कई रूप धरता, जो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा वो देवता, जो ज्योति सा जो दूर रहकर भी सदा से पास मेरे है यही एहसास देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा। मैं जागता या सो गया हूँ, मैं जागता या सो गया हूँ, ये देखने द्वार पर दस्तक सदा देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा जो गति था मेरी नियति था, जो गति था मेरी नियति था ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता। बड़ी आचार्य जी वो विद्या से आते हैं।